समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं करिश्मा राय और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
Hello, Karishma. Hello, and good evening to all our listeners tuned in to Parikrama on 100.1 FM. I am Abhishek Mukhopadhyay, and with me today, of course, is my co-host Karishma. And for you, we have a selection of news, a discussion segment, Dateline India, reports, capsules, tributes, and much more. All these over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first.
भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम का स्वागत किया, कहा इससे पश्चिम एशिया में स्थायी शांति आएगी।
मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इश्यूज एडवाइजरी टू इंडियन नेशनल्स टू एग्जिट ईरान एक्सपीडिशियसली ओवर इवॉल्विंग सिचुएशन इन वेस्ट एशिया।
अमेरिका ईरान संघर्ष विराम समझौते के बीच वैश्विक तेल की कीमतों में 20% की गिरावट, सेंसेक्स में लगभग 4% की वृद्धि, निफ्टी में 800 से अधिक अंक की बढ़त, डॉलर के मुकाबले रुपया 39 पैसे मजबूत हुआ।
आरबीआई कीप्स रेपो रेट अनचेंज्ड, प्रोजेक्ट्स इंडियाज रियल जीडीपी ग्रोथ फॉर करंट फिस्कल एट 6.9%।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 11 साल पूरे होने पर कहा यह योजना युवाओं में स्वरोजगार को बढ़ावा देने में बहुत मददगार साबित हुई।
And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about 11 years of the Pradhan Mantri Mudra Yojana. Today's program is special. We celebrate a milestone, 11 years of the Pradhan Mantri Mudra Yojana, a scheme that has transformed the lives of millions and reshaped the entrepreneurial landscape of India. Now let's take you back to 2015, a time when countless aspiring entrepreneurs had ideas, determination and dreams, but lacked access to financial support. Traditional banking systems often required collateral, making it difficult for small business owners, especially from rural and semi-urban areas, to secure loans. And it was in this context that the Pradhan Mantri Mudra Yojana was launched with a simple yet powerful vision, fund the unfunded.
और आज 11 साल बाद वह सोच दुनिया की सबसे बड़ी माइक्रो फाइनेंसिंग पहलों में से एक बन गई है। हाल के आंकड़ों के अनुसार इस योजना के तहत अब तक लगभग 58 करोड़ लोन मंजूर किए जा चुके हैं। अब जरा सोचिए कि 58 करोड़ सपनों को सहारा मिला है। ये आंकड़े सिर्फ आंकड़े ही नहीं है, ये उन लोगों की रोजी रोटी को दिखाते हैं जो इस योजना से बनी है, उन परिवारों को दिखाते हैं जिनका जीवन बेहतर हुआ है और उन भविष्य को दिखाते हैं जो सुरक्षित हुए हैं।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन दिस ओकेजन शेयर्ड हिज थॉट्स थ्रू अ सोशल मीडिया मैसेज। ही हाइलाइटेड हाउ द स्कीम हैज प्रूवन टू बी हाईली बेनिफिशियल इन प्रमोटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अमंग द यूथ। ही एम्फसाइज्ड दैट व्हेन इंडिविजुअल्स आर गिवन द राइट अपॉर्चुनिटीज दे नॉट ओनली बिकम सेल्फ रिलायंट बट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन। And in his words, the scheme has redefined access to credit, giving millions not just financial support, but also the confidence to dream big and the means to fulfill those dreams. And perhaps that is the true success of this initiative, not just providing loans, but building belief. Let's now understand how this scheme actually works, because its design is one of the key reasons behind its success. The Mudra Yojana offers collateral-free loans, meaning borrowers don't have to pledge any assets. And this is a game changer, especially for small vendors, artisans, shopkeepers, and first-time entrepreneurs.
अब इसे ऐसे समझिए कि ये लोन 20 लाख रुपए तक उपलब्ध है और इन्हें बिजनेस के जीवन चक्र के आधार पर चार चरणों में बांटा गया है। यानी कि पहला है इसमें शिशु उन उद्यमियों के लिए जो अभी अभी शुरुआत कर रहे हैं, उसके बाद है किशोर उन बिजनेसेस के लिए जो अपने विकास के चरण में हैं, उसके बाद है तरुण यानी उन उद्यमों के लिए जो अपना विस्तार करना चाहते हैं, और चौथा चरण है तरुण प्लस यानी कि फंडिंग की ज्यादा जरूरतों के लिए। तो यह व्यवस्थित तरीका यह सुनिश्चित करता है कि उद्यमियों को उनकी जरूरतों के हिसाब से सहायता मिले, चाहे वे अभी शुरुआत कर रहे हों या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हों।
एंड लेट्स नाउ टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग एस्पेक्ट्स ऑफ द स्कीम, Women empowerment. Out of all the loans sanctioned, 2/3 have been given to women entrepreneurs. Yes, you heard that right. Women across India stepping forward, starting businesses, generating income, and becoming pillars of economic growth. From running small tailoring units to launching food enterprises and retail shops, women are leading change at the grassroots level.
और इसके साथ ही एक और उल्लेखनीय उपलब्धि ये भी है कि सभी ऋणों से लगभग पांचवा हिस्सा पहली बार उद्यमी बनने वालों को दिया गया। इसका मतलब यह है कि लाखों ऐसे लोग जिन्होंने पहले कभी कोई व्यवसाय नहीं चलाया था, अब गर्व के साथ अपने व्यवसाय के मालिक हैं। इस योजना ने उन लोगों के लिए भी दरवाजे खोल दिए हैं जो कभी औपचारिक वित्तीय प्रणाली से बाहर थे। अब जरा कल्पना कीजिए कि ऐसे छोटे से शहर का कोई युवा जिसका सपना एक रिपेयर की दुकान खोलने का था, या गांव की कोई महिला जो अपना खुद का फूड बिजनेस शुरू करना चाहती थी, या कोई रेड़ी पटरी वाला विक्रेता जो अपने व्यवसाय को बढ़ाकर एक छोटी सी रिटेल दुकान खोलना चाहता हो।
एंड दिस आर नॉट जस्ट स्टोरीज, दिस आर एवरीडे रियलिटीज मेड पॉसिबल थ्रू मुद्रा लोन्स। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ऑल्सो मार्क्ड द 11 ईयर माइलस्टोन विद स्ट्रॉन्ग एप्रिसिएशन फॉर द स्कीम। And she described it as instrumental in reshaping the credit landscape for MSMEs and individual entrepreneurs. And according to her, the last decade has witnessed a silent transformation where crores of ordinary citizens stepped into entrepreneurship with newfound confidence and independence.
और उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि इस योजना ने ऋण मिलने में आने वाली रुकावटों को भी हटाकर उद्यमों को लोकतांत्रिक बनाया है, जिससे यह हर किसी के लिए सुलभ हो गई है, क्योंकि जब अवसरों तक पहुंच समान होती है तो नवाचार फलता फूलता है, स्थानीय अर्थव्यवस्थाएं बढ़ती हैं और समुदाय समृद्ध होते हैं। भविष्य की ओर देखते हुए वित्त मंत्री ने यह विश्वास व्यक्त किया कि मुद्रा योजना 2047 तक विकसित भारत बनने की भारत की यात्रा में एक अहम भूमिका निभाती रहेगी।
And indeed, initiatives like these form the backbone of a strong, self-reliant economy. And let's take a moment to reflect on what makes this scheme truly unique. It bridges the gap in financial accessibility. It empowers small and micro businesses. It promotes self-employment over job dependency. It supports inclusive growth, especially for women and first-time entrepreneurs. And in a country as diverse and dynamic as India, such initiatives are not just policies, they are catalysts of transformation.
और जैसे ही हम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 11 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं, एक संदेश बिल्कुल साफ उभरकर सामने आया है। जब लोगों पर भरोसा किया जाता है और उन्हें सशक्त बनाया जाता है, तो वे हर एक चुनौती का डटकर सामना करते हैं। इस योजना ने यह साबित कर दिया है कि सही सहयोग मिलने पर एक छोटा सा विचार भी एक सफल उद्यम का रूप ले सकता है, और इसने न केवल व्यवसायों को मजबूती दी है बल्कि लोगों के आत्मविश्वास, गरिमा और आत्मनिर्भरता की भावना को भी बल दिया है।
So to conclude our discussion on 11 years of the Pradhan Mantri Mudra Yojana, well, to all our listeners, whether you are an aspiring entrepreneur, a student with a dream, or someone looking to start something of your own, remember, opportunities exist and support systems like Mudra Yojana are here to help you take that first step. Until next time, stay informed, stay inspired. And keep believing in your dreams.
और श्रोताओं, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
And straight away we start off with a story from Silchar, and promoting the spirit of Atithi Devo Bhava, Assam University has opened its doors to the youth delegation from Central India. The 10-day long Ashtalakshmi Darshan program in Silchar aims to bridge the cultural gap between the Northeast and the rest of the country. We have more from a correspondent.
The youth delegation has 44 members. It includes 20 students from Rajasthan's universities and 20 from Madhya Pradesh's universities. Two coordinators from each state lead the group. The Northeastern Council and Assam University jointly organize this initiative. The purpose of the program is to get the outside students knowing the unique culture and heritage of Northeast India. At the formal welcome in the university guest house, Vice Chancellor Professor Rajive Mohan Pant explained the term Ashtalakshmi to the visitors. It represents the 8 northeastern states. He called them the pillars of India's prosperity. Several distinguished speakers addressed the event. Geoscientist Trilokan Singh shared stories of his travels through the Northeast in the 1970s. Program nodal officer Professor M. Gangabhushan noted that students must experience grassroots realities. Only then can they truly understand the local way of life. The delegation spent the last 10 days immersed in activities across the region. They visited different places in Dima Hasao, Mizoram and Barak Valley from their camp at Assam University. This Tuesday they will return home. Shashwati Bhattacharji, RNU, Akashvani, Silchar.
और अब बात उत्तराखंड की. उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 9 दिवसीय दून बुक फेस्टिवल 2026 का आयोजन किया जा रहा है. 4 अप्रैल से शुरू हुआ यह महोत्सव आगामी 12 अप्रैल तक चलेगा. भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय और उत्तराखंड सरकार के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर से आए साहित्यकार, कलाकार और साहित्य प्रेमी भाग ले रहे हैं. महोत्सव में देश के प्रसिद्ध लेखक और विभिन्न क्षेत्रों की चर्चित हस्तियां अपने विचार साझा कर रही हैं. साथ ही बच्चों के लिए प्रतिदिन विविध गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है. इसके अलावा गढ़वाली, कुमाऊनी तथा देश के विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को भी आकर्षण का केंद्र बनाया गया है. इस संबंध में अधिक जानकारी दे रही हैं हमारी राज्य संवाददाता साक्षी सिंह.
दून बुक महोत्सव में साहित्य, संस्कृति और कला का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है, जो समाज में ज्ञान और विचारों के आदान प्रदान को नई दिशा दे रहा है. राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 अप्रैल को देहरादून में आयोजित दून बुक फेस्टिवल 2026 का शुभारंभ किया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी से अपील करी कि समारोह में बुके और अन्य उपहारों के स्थान पर पुस्तकें और पौधे भेंट करने की परंपरा को अपनाया जाए. उन्होंने कहा कि 9 दिवसीय इस महोत्सव में विभिन्न सत्रों, संवाद कार्यक्रमों, पुस्तक परिचर्चा तथा लेखन से मिलिए जैसे आयोजनों के माध्यम से साहित्यिक विमर्श को समृद्ध किया जाएगा. महोत्सव में बच्चों के लिए स्थापित चिल्ड्रन पवेलियन को भी उन्होंने सराहनीय पहल बताया और कहा कि इससे नई पीढ़ी में पठन और पाठन की रुचि विकसित होगी. उन्होंने कहा कि पुस्तकों का महत्व केवल शब्दों तक सीमित नहीं, बल्कि वे ज्ञान का स्थायी स्रोत है जो पीढ़ी दर पीढ़ी समाज को दिशा प्रदान करती है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार साहित्य और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए निरंतर प्रयासरत है. उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान, साहित्य भूषण सहित विभिन्न पुरस्कारों के माध्यम से साहित्यकारों को सम्मानित किया जा रहा है तथा विभिन्न भाषाओं में ग्रंथ प्रकाशन के लिए अनुदान भी दिया जा रहा है. श्री धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की पावन धारा सदैव से ज्ञान, साहित्य और रचनात्मकता की भूमि रही है. गढ़वाली, कुमाऊनी और जानसारी जैसी समृद्ध क्षेत्रीय भाषाएं, राज्य के लोकगीत, लोक कथाएं और लोक कला प्रदेश की साहित्यिक पहचान है. इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों और प्रकाशनों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया और छात्रों को पुस्तकें भेंट कर उन्हें अध्ययन के लिए प्रेरित किया. परिक्रमा के लिए आकाशवाणी देहरादून से साक्षी सिंह.
In Tamil Nadu, it is a warm summer and also exam season for students. With elections around the corner, the thrill of celebrating the political festival of democracy never fails to touch the lives of everyone. It brings in a lot of activity in the state. From the voter to the contestant, polling and results, a lot of stakeholders, including the flower merchants. We have more from a correspondent.
Festivals is all about celebration. This is time to celebrate the festival of democracy in the state of Tamil Nadu. Election seasons involves a variety, the flags, flowers, festoons and dancers, DJs. It's all for the elections. The season is also for marriages and temple festivals. Fresh flowers are used for making decorations of political stages, flower garlands and also for throwing of flowers during roadshow. One can see different colors of flowers and also of various sizes, small to 10 feet garlands seem to crowd the market as they are given to the political leaders. The sweet-scented jasmine is being sold at rupees 60 to 70 per kg. Magnolia costs around 15 to 30 per kg. Rose and its varieties cost rupees 60 to 70 per kg. A regular rose garland costs 400 to 700 rupees, while the larger garlands range from 4,000 to 13,000 rupees. Flowers remain feast to the eyes and also to those who receive it. But politics is not all about flowers or soft feelings. Joy, Akashwani, reporting for Parikrama from Chennai.
और श्रोताओं, अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। हॉकी इंडिया ने आगामी अर्जेंटीना यात्रा के लिए 24 सदस्यीय भारतीय महिला टीम की घोषणा कर दी है। यह यात्रा ब्यूनस एरिस में 13 से 17 अप्रैल तक चलेगी। भारतीय टीम की कप्तानी सलीमा टेटे करेंगी। भारत और अर्जेंटीना के बीच 4 मैच खेले जाएंगे और ये यात्रा इस साल FIH हॉकी विश्व कप और एशियाई खेलों सहित आगामी प्रमुख टूर्नामेंट के लिहाज से महत्वपूर्ण है।
एंड ऑन टू आईपीएल क्रिकेट। इन आईपीएल क्रिकेट दिल्ली कैपिटल्स विल टेक ऑन गुजरात टाइटंस इन द 14th मैच ऑफ द टूर्नामेंट एट द अरुण जेटली स्टेडियम इन दिल्ली। द मैच विल बिगिन एट 7:30 PM। एंड मूविंग ऑन टू बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप। Indian shuttler Ayush Shetty has delivered a stunning performance at the Badminton Asia Championships in Ningbo, China. In the opening round today, Shetty defeated world number 7, Li Shifang, in straight games 21-13, 21-16, in a match lasting just over 50 minutes. Shetty will next face Taiwanese player Li Yu Yen for a place in the quarterfinals. In the mixed doubles, Indian's pair of Dhruv Kapila and Tanisha Krasto registered a hard-fought win over Thailand's Phuvanath Hormanlukit and Benyappa Aimsard. In the other fixtures, Thomas Cup winner Aegis Pranoy will start against world number 62, N Hai Dang of Vietnam, while youngster Ayush Shetty will meet 5th seed Li Shifang of China, the 2023 All England champion, in a first round match. Meanwhile, top Indian shuttlers PV Sindhu and Lakshya Sen are scheduled to begin the campaigns later today. And moving on to some business news, benchmark domestic equity indices surged nearly 4% today as oil prices declined following the announcement of 2-week ceasefire agreement between Washington and Tehran. The Sensex skyrocketed 2,946 points to close at 77,563, while the Nifty jumped 874 points to settle at 23,997. In the broader market, on the National Stock Exchange, the mid-cap 100 soared over 4%, while the small-cap 100 closed 4.4% higher. The markets opened sharper, higher with a gap of over 3% following the temporary ceasefire announcement. Indices held on to gains throughout the session, buoyed by broad-based buying, and closed in the green for the 5th consecutive day. And for more updates about the market activities, tune into Akashvani's bilingual program, Market Mantra, at 6:30 PM. This evening.
और अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
Today we remember Mangal Pandey, whose courage helped arouse the fire of independence in the hearts of native sepoys. Mangal Pandey hailed from Balia district of Uttar Pradesh. He was a sepoy of the 34th Infantry stationed at Barakpur.
In 1857, the Britishers introduced a new Enfield rifle that required a soldier to bite off the ends of greased cartridges in order to load the weapon. A rumor spread that the lubricant used in the cartridges was either cow or pig lard. A belief arose among the sepoys that the British had deliberately used the lard on the cartridges.
On March the 29th, 1857, Pandey tried to arouse his fellow sepoys to rise up against the British officers. He attacked two of those officers, attempted to shoot himself after having been restrained, and eventually was overpowered and arrested. Pandey was soon tried and sentenced to death. He was court-martialed and hanged at Barakpur on 8th of April 1857.
After 1 month of this incident, on the 10th of May 1857, sepoys revolted in Meerut, and that led to the outbreak of the First War of Independence in 1857. AIR News salutes the brave son of the soil.
We also pay tribute to Ropui Liani, the daring Mizo freedom fighter. Born in 1828, Ropui Liani was the daughter of a great Mizo chief, Lal Savunga, and was married to Wandula, an equally prominent chief of South Lushai Hills. In early 1890, the British started to establish supremacy over some Mizo regions. However, Mizo chiefs did not accept British authority.
Ropui Liani took the reins of principality after the death of her husband, Wandula, and began to rule from her village, Ralwong. She challenged the British authority and encouraged people to disobey Britishers' diktats.
She told other chiefs who had joined the British,
"Even if you all surrender, I am here, the daughter of Lal Savunga. We will never surrender to foreign rulers."
She became a rallying point for Mizo principalities against the British.
Enraged by her resistance, the Britishers sent several campaigns to subdue her. In one such campaign, British Lieutenant Stewart, along with two soldiers, was killed. Ropui Liani and her son, Lal Thuama, were accused of instigating other chiefs by the British. Later, the British were successful in arresting her. Even after her capture, Britishers feared that her presence, even as a captive in the area, would escalate tension and disaffection among the locals. Thus, from the 8th of April 1894, she was held captive for almost 2 years in Chittagong jail. Ropui Liani died in prison in 1895, leaving behind an inspiring legacy of our freedom struggle. We salute the great daughter of the soil.
We also remember Bankim Chandra Chattopadhyay, also known as Bankim Chandra Chatterjee, who died on the 8th of April 1894. He's famous as the author of the national song of our country, Vande Mataram. Bankim Chandra Chatterjee was born on the 27th of June 1838 in Chobis Parganas district of Bengal. After his graduation, he was appointed as deputy collector in Bengal.
Bankim Chandra began his literary career as a writer of verse. His first Bengali novel, Durgesh Nandini, was published in 1865.
Bankim Chandra Chatterjee's most famous novel was Anandamat, which is based on the famous Sanyasi revolt. Anandamat contained the song Bande Mataram, which was later adopted as our national song.
Bankim Chandra also wanted to bring about a cultural revival in Bengal. His novels have been translated in almost all the major languages of India. Bankim Chandra passed away on the 8th of April 1894. We salute the great nationalist.
इसके साथ ही श्रोताओं, अपनी सरोद की धुनों से संगीत को जीवंत बनाने वाली महान कलाकार शरण रानी की आज पुण्यतिथि है। शरण रानी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की विद्वान और सुप्रसिद्ध सरोद वादिका थी। उन्होंने सरोद जैसे कठिन वाद्य यंत्र को न सिर्फ सीखा बल्कि उसे एक नई पहचान दी। उन्होंने भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने संगीत का जादू बिखेरा और भारतीय शास्त्रीय संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अपने अद्भुत योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया।
Yes, and we're also remembering Pablo Ruiz Picasso, who passed away on this day in 1973. Picasso was a Spanish painter, sculptor, printmaker, ceramicist, and theater designer who spent most of his adult life in France and one of the most influential artists of the 20th century. He is known for co-founding the Cubist movement, the invention of a constructed sculpture, the co-invention of the collage, and for the wide variety of styles that he helped develop and explore. And among his most famous works are the proto-cubist Les Demoiselles and D'Avignon in 1907, and the Antigua painting Guernica, a dramatic portrayal of the bombing of Guernica by German and Italian air forces during the Spanish Civil War. His career spanned more than 76 years, from his late teens to his death in 1973.
इसके साथ ही आज डी जयकांतन की भी पुण्यतिथि है। डी जयकांतन भारतीय साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। उनकी रचनाओं में आम इंसान की जिंदगी, संघर्ष और भावनाओं की झलक साफ दिखाई देती थी। उन्होंने कई उपन्यास और कहानियां लिखी जो पाठकों के बीच काफी लोकप्रिय रही और आज भी पढ़ी जाती है। अपने साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।
Solomon Saul Lewitt passed away on this day in 2007. He was an American artist linked to various movements, including conceptual art and minimalism. Lewitt came to fame in the late 1960s with his wall drawings and structures, a term he preferred to sculptures, but was prolific in a wide range of media, including drawing, printmaking, photography, painting, installation, and artist books. He has been the subject of hundreds of solo exhibitions in museums and galleries around the world since 1965. And the first biography of the artist, Saul Lewitt, A Life of Ideas by Larry Bloom, was published by the Wesleyan University Press in the spring of 2019.
इसके साथ ही श्रोताओं, आज कुमार गंधर्व का जन्मदिन है, जिनका जन्म 1924 में हुआ था। कुमार गंधर्व भारतीय शास्त्रीय संगीत के ऐसे महान गायक थे जिन्होंने अपनी अलग शैली से संगीत को एक नई दिशा दी। उनका गायन पारंपरिक होते हुए भी बेहद अनोखा था, जो श्रोताओं को एक अलग ही अनुभव देता था। उन्होंने कई रागों को अपने खास अंदाज में प्रस्तुत किया। खासतौर पर राग मधुवंती और राग मालकौंस की उनकी प्रस्तुति आज भी संगीत प्रेमियों के बीच बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा उनके भजन आज भी लोगों के दिलों को छू जाते हैं। और अपने अद्भुत संगीत योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया।
Yes, and we are also remembering Allu Arjun, who was born on this day in 1982. He is an actor who works in Telugu cinema. He is one of the highest paid actors in Indian cinema and has been featured in Forbes India Celebrity 100 list since 2014. Referred to as the icon star, he is known for his versatility and acclaimed dancing abilities. He has appeared in over 25 films and is a recipient of several accolades, including a National Film Award, 6 Filmfare Awards and 3 Nandi Awards. Allu Arjun's highest grosses subsequently came with the Pushpa franchise, which consists of Pushpa The Rise in 2021 and his sequel Pushpa 2 The Rule in 2024, the latter of which ranks among the highest grossing Indian films of all time. He received acclaim for his performance in Pushpa The Rise, which earned him his first National Film Award for Best Actor and the 4th Filmfare Award for Best Actor Telugu. And in 2024, he was honored with the IFFI Special Recognition for Contribution to Bharatiya Cinema Award at the 55th IFFI. Let's listen in to a dialogue from the movie Pushpa The Rise.
Pushpa, Pushpa Raj. Pushpa naam sunke flowers samjhe kya? फायर है मैं क्या भाई सांप सुन गया है क्या जो तुम सोच रहे हो वही चूहा है वो दिन तुमको इतना ज्ञान दिया कि मैं किसी से डरता नहीं अब गोली की आवाज आ गई ना एक बात को अपने भेजे में घुसा दे मैं इधर किसी के फट्टे में टांग अड़ाने को नहीं आया राज करने के लिए आया मैं
और इसी के साथ भावों को कविता में ढालने वाले कवि हैं दिनेश कुमार जिनकी आज जयंती है 1950 में जन्मे दिनेश कुमार शुक्ल हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि माने जाते हैं उन्होंने अपनी कविताओं के जरिए आम इंसान की भावनाओं को बहुत ही सरल और प्रभावी शब्दों में व्यक्त किया यही वजह है कि उनकी कविताएं पढ़ने और सुनने वाले लोगों के दिलों में खास जगह बनाती हैं उनके साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें कई सम्मानों से नवाजा गया जिसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी शामिल है
Yes, and Ezra Michael Koenig was born on this day in 1984. He's an American musician, record producer, and radio personality. He's the lead vocalist, guitarist, and primary songwriter of the indie rock band Vampire Weekend. Additionally, Koenig is the creator of the Netflix animated comedy series Neo Okio and also hosts the Apple Music radio talk show Time Crisis with Ezra Koenig. Time Crisis is airing its 10th season as of 2024. Let's listen in to his hit track, Sunflower.
Sunflower in the morning, standing in the garden, all before you wait. No power can compel you out into
Yes, and also Akhil Akineni was born on this day in 1994. He's an actor known for his work in Telugu cinema. He debuted as a child artist in the film Sisinidri in 1994, for which he won a Filmfare Special Award. Akineni made his debut as a lead actor with Akhil in 2015, which won him the Filmfare Best Male Debut. He later went on to star in Hello and Mr. Majnu.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है परिक्रमा के संग को यहीं समाप्त करने का, तो अनुमति दीजिए करिश्मा और अभिषेक मुखोपाध्याय को.
नमस्कार.